नाम का ये ग्रंथ पूज्य बहिन श्री की मुमुक्षुओं के साथ में जो तत्व चर्चा हुई है उसका संकलन है। और उसमें ये जो अपना बोल नंबर 7 चल रहा है, इस बोल में ये बात आई है, प्रश्न ये है कि राग में सहज एकाकार थई जवाय छे तेनाथी जुदो पड़वानु अभ्यास केवी रीते और उसमें
ओंकार में संयुक्त अंत्यं जयन्ति योगिनः कामदमोक्षणं से ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान मंगलम मंगलम कुंकुंदारी उजेन्द्र मोक्ष मंगलम नमः
खाता पीता ये आई
दिन पानों बुद्धिया
ते वर्ते वस्तु सारी छे ने आ वस्तु खराब छे ते वो राग वे छे ते बदी कल्पना छे वहाँ राग पुद्गल तो अलग हो ही गया क्योंकि पुद्गल में जानने का स्वभाव नहीं है, लेकिन सच में राग भी अलग हो जाएगा क्योंकि राग में जानने का स्वभाव नहीं है। और ये बात हमने कल 72 नंबर की गाथा के आधार पर अपन लोगों ने वो चर्चा की थी। उसके बाद अगला पेरा में वो कहते हैं कि आ खुराक पड़े ते पेट में पड़े छे मारा गायक मा ते पड़तो नथी। देखो क्या कहा, ये भी एक समझाने की शैली है कि खुराक पड़ती है वो पेट में पड़ती है, समझाने की शैली में लोक में क्या बोला जाए तो समझाने की शैली है। वास्तव में तो एक एक परमाणु भिन्न है, लेकिन फिर भी समझाने में ऐसा आता है कि आत्मा में खुराक आती कहाँ है, आत्मा में भोजन आदि का जो 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 ये ग्रास वगैरह है कि आत्मा में आती कहाँ है। हूँ तो जान नारो तेनाथी जुदो छू तेम बारंबार विचार करे। बस एक 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 सूत्र अपने को दिया कि बारंबार विचार, और बारंबार क्या विचार करना कि हूं तो जाननारो छू, जानवा सिवाय मारो कई काम नथी, बस जाननारो छू जाननारो छू, ये बारंबार विचार करे। अंतर में तेने ते जातनो बेसवू जोइए कि राग आवे ते काई मारो स्वरूप नथी। देखो अकेला जाननारो छू धारणा ज्ञान में ये बात लेकर के विचार कर ले उतने से भी काम नहीं चलेगा। क्या होना चाहिए तो उसके लिए बहुत अच्छी बात कही कि अंतर में आ जातनु बेसवु जोइए, जमना चाहिए ये बात अंदर में। क्या बात जमना चाहिए कि राग आवे ते काई मारो स्वरूप नथी। क्यों राग मेरा स्वरूप नहीं है, एक कैसे नक्की करे अपन कि देखो अगर राग आत्मा का स्वरूप होवे तो जैसे जैसे आत्म स्थिरता बढ़ती जाए वैसे वैसे राग की खिलावट होनी चाहिए। आगे समझ में कि जैसे जैसे अपन स्वरूप स्थिरता की श्रेणियां चढ़ें तो वैसे वैसे राग बढ़ना चाहिए, लेकिन होता इसका उल्टा है कि जैसे जैसे ज्ञानी धर्मात्मा स्वरूप की श्रेणियों में आरोहण करते हैं, माने चौथे गुणस्थान में है, अब चौथे गुणस्थान से पंचम गुणस्थान में आते हैं, पंचम से छठे सातवें गुणस्थान में आते हैं, सातवें गुणस्थान के आगे फिर आठवां गुणस्थान, नौवां, दसवां और छपक श्रेणी होती है ना, तो बारहवां गुणस्थान। तो जैसे जैसे वो स्वरूप की स्थिरता बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे राग मिटता जाता है। तो जो मिट जाए, जिसका नाश हो जाए, वो स्वभाव नहीं हो सकता और ज्ञान खिलता जाता है। चौथे गुणस्थान में स्वरूप को पकड़ने योग्य ज्ञान की जो दशा है, पांचवें गुणस्थान से उसकी अपेक्षा से बड़ा है, छठे सातवें गुणस्थान में उसकी अपेक्षा से और बड़ा है और आगे के गुणस्थानों में और बड़ा है स्वरूप को पकड़ने की ज्ञान की क्षमता है ना। और 12वें गुणस्थान में तो समझ लो केवल ज्ञान की तैयारी हो गई, और 12वें गुणस्थान का अंतिम समय और 13वां गुणस्थान का पहला समय। इधर 12वें गुणस्थान के अंतिम समय का नाश, 13वें गुणस्थान की प्रथम समय की उत्पत्ति, वो केवल ज्ञान लेकर के ही उत्पन्न होता है। राग यदि आत्मा का स्वभाव हो तो स्वभाव स्वभाव के आश्रय से बढ़ना चाहिए, लेकिन स्वभाव नहीं है इसलिए स्वभाव का आश्रय करने पर वो मिटता है। इससे यह नक्की होता है कि राग आत्मा का स्वभाव नहीं है। दूसरी बात कि जब तक राग का एक कण भी विद्यमान रहता है, एक कण, तब तक केवल ज्ञान नहीं होता। केवल ज्ञान को कौन रोकता है? तो अगर राग आत्मा का स्वरूप हो तो क्या आत्मा का स्वरूप आत्मा के स्वरूप को प्रकट करने में विघ्न करेगा? राग को तो फिर आत्मा को केवल ज्ञान प्रकट करने में सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन वो तो नहीं करता। वो तो राग का कण रहेगा वहां केवल ज्ञान होगा ही नहीं। देखो, राग का कण रहेगा वहां केवल ज्ञान नहीं होगा, और राग में एकत्व बुद्धि रहेगी तब तक समय दर्शन नहीं होगा। क्या मतलब इसका? कि राग में एकत्व बुद्धि वो सम्यक दर्शन को रोकता है, और राग का अस्तित्व वो केवल ज्ञान को रोकता है। आ गया? इससे ये बात नक्की होती है कि राग आत्मा का स्वरूप नहीं है। ये भेद ज्ञान से इस बात का पता चलेगा। पोतानी मंदता ने लईने राग आवे छे, छता विभावनी परणतीति हूं छूटो छू। क्या मतलब? कि पोतानी मंदता ने लईने, स्वयं के पुरुषार्थ की कमजोरी है। आप एक बात ध्यान देना कि मुनिराज का गुणस्थान अभी चौथे पांचवें गुणस्थान में तो ठीक है, अभी मुनिराज का जो गुणस्थान होता है पांचवें गुणस्थान से जब दीक्षा अंगीकार करते हैं तो कौन सा गुणस्थान आता है? पहले सातवां गुणस्थान आता है ना, और सातवें गुणस्थान से जब वो उपयोग स्वरूप से बाहर आवे तब वो गिरते हैं, स्वरूप से गिरे तो छठा गुणस्थान आता है, और छठे गुणस्थान में मुनिराज को 28 मूल गुण आदि का विकल्प आता है। इसका मतलब क्या हुआ? कि 28 मूल गुण आदि का विकल्प वो मुनिराज की शुद्धोपयोग की दशा को पतित करने का कारण है। ख्याल में आ गया? नहीं आ गया? वो मुनिराज की दशा को पतित करता है, माने सातवें गुणस्थान से उनको गिरा देता है। ये बात अलग है कि छठे गुणस्थान में भी तीन कसाई चौकड़ी के अभाव की शुद्ध परिणति उनको निरंतर चलती है, लेकिन उपयोग तो नहीं होता रहता ना, उपयोग तो सविकल्प हो गया। तो 28 मूल गुण का विकल्प भी मुनिराज को सविकल्प दशा में आ जाता है, सविकल्प दशा में ला देता है। और यही कारण है कि जब आचार्य जयसेन ने समय सार परमागम का पुण्य पाप अधिकार की टीका लिखी, जयसेन आचार्य की बात करता हूं, तो उन्होंने उस अधिकार के अंत में लिखा, इस प्रकार पाप अधिकार की मुख्यता से यह अधिकार समाप्त हुआ। किस अधिकार को लिखा पाप अधिकार? पुण्य पाप अधिकार को आचार्य जयसेन ने पाप अधिकार लिखा। तो शिष्य ने तुरंत प्रश्न खड़ा कर दिया, क्योंकि अगर शिष्य प्रश्न खड़ा नहीं करे तो अपन लोग वो चतुर हैं, अपन लोग कहते कि ये लिखने से गलती रह गई, ये पुण्य शब्द छूट गया, यहां पे मिसप्रिंट है। तो शिष्य ने तुरंत प्रश्न किया कि इस अधिकार में आपने व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात की है, व्यवहार रत्नत्रय की बात की है, प्रभु ये पाप अधिकार कैसे हुआ? तो आचार्य जयसेन ने बहुत सुंदर उत्तर दिया और उन्होंने कहा कि अरे हमें अपने स्वरूप से पतित करे उसका नाम पाप। अब मुनिराज की भूमिका में हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह का पाप तो होता नहीं, जिसे अपन दुनिया जिसे पाप समझती है वो पाप तो मुनिराज की भूमिका में होता नहीं, अशुभोपयोग रूप पाप। तो फिर कौन सा पाप? कि मुनिराज जो छठे गुणस्थान के विकल्प में आते हैं कि वो छठे गुणस्थान का विकल्प भी उनको सातवें गुणस्थान से पतित होने पर आता है, इसलिए मुनिराज कहते हैं कि जो हमें स्वरूप की अनुभूति से पतित करे उसे हम पाप नहीं कहें तो क्या कहें। एक बात, राग जब भी आता है, एक बात ध्यान देना कि राग जब भी होता है वो किसी न किसी पर द्रव्य के लक्ष्य से होता है, पर द्रव्य से नहीं। गुरुदेव की भाषा में ऐसा बोलते थे गुरुदेव श्री कि राग पर संग से होता है, पर से नहीं, लेकिन किससे होता है कि पर संग एव, कि तुम पर का संग करता है तो राग की उत्पत्ति होती है। तो उन्होंने कहा कि जब पर का संग करना पड़े तो हमें तो पराधीनता हो गई ना, हमें तो दूसरे का अवलंबन आया ना, तो हमारी स्वाधीनता का नाश करे इसलिए हम उसे पाप कहते हैं। ये आचार्य जयसेन के शब्द हैं, पुण्य पाप अधिकार खोल के देखना। अपनी पोतानी मंदता ने लईने राग आवे छे, ये राग आता है ना कि ये राग पुरुषार्थ की मंदता का परिचय देता है। जैसे एक अपन लोग आंख पे चश्मा लगा के रखते हैं, तो चश्मा लगाते थे किस बात की सूचना है ये कि अपनी आंखें बहुत तेज है, कि किसकी सूचना है ये कि आंखें कमजोर है, ये आंखों की कमजोरी की सूचना है चश्मा। कि इसी तरह ये विकल्प आया ना कि ये विकल्प इस बात को बताता है कि ज्ञानी धर्मात्मा की भूमिका में अभी पुरुषार्थ की कमजोरी है, मुनिराज की भूमिका में भी पुरुषार्थ की कमजोरी है, इसलिए विकल्प में दिखते हैं। आया ये बात है, आया ना, तो इसलिए वो आत्मा का अगर अब देखो, तथापि विभाव नी परणतीति हूं छूटो छू, क्या रे अत्यारे, ये तो याद रखना ही पड़ेगा। आ गया, हूं सिद्ध भगवान जेवो आत्मा छू, कहां तुलना कर रहे हैं अपनी, मम स्वरूप है सिद्ध समान अमित शक्ति गुण ज्ञान निदान, ऐसा आता कि नहीं आता। खरे खर विभाव ए वस्तु नो मूल स्वरूप होय नहीं, अने जे स्वरूप होय ते विभाव रूप न होय। एक वचनामत में एक बहुत अच्छा बोल आता है, मलिनता रुचती नहीं और मलिनता टिकती नहीं, इसलिए मलिनता वस्तु का स्वरूप हो ही नहीं सकती। आता कि नहीं आता, बोल सुना होगा ना, बोलिए है? मलिनता रुचती नहीं और मलिनता टिकती नहीं। तो जो रुचती नहीं और टिकती नहीं तो कहते हैं कि वो मलिनता वस्तु का स्वरूप नहीं होता। यहां पे बहुत अच्छा लगा, ये बहुत अच्छी बात कही कि विभाव वस्तु नो मूल स्वरूप नहीं हो, मूल स्वरूप नहीं हो, वो तो ऊपर ऊपर से उपाधि लगी। जैसे कपड़ा गंदा होता है तो कपड़ा गंदा होना तो गंदगी कपड़े का मूल स्वरूप है या वो आगंतुक है, आगंतुक है, और अपने को ये पता है कि आगंतुक है तो अपन उसको साबुन लगा करके साफ कर देते हैं, और अपने को ये पता लगे कि भाई तुम साबुन लगाओ तुम्हारी तकदीर अच्छी होगी तो मेल चला जाएगा, और तुम्हारी तकदीर खराब होगी तो कपड़ा चला जाएगा मेल बच जाएगा, ऐसा होने लगे तो अपने में से कौन साबुन लगाएगा बताओ जरा। सोने के साथ में खोट होती है, होती है, लेकिन खोट सोने का स्वरूप नहीं होती। जब से खदान में से सोना निकला वो कीट कालिमा के साथ ही होता है, लेकिन कीट कालिमा सोने का स्वरूप नहीं होती। सोने के साथ कीट कालिमा होने पर भी कीट कालिमा कभी सोना नहीं होती, और हम बेधड़क इस विश्वास के भरोसे बेधड़क उस सोने के पत्थर को, पाषाण पत्थर को अपन लोग अग्नि में तपने के लिए डाल देते हैं, और सोलहवान ताव देने पर कीट कालिमा जल करके खाक हो जाती है और जो सोना सोना है वो बचा रह जाता है। ये अपने को भरोसा है कि नहीं, कीट कालिमा के साथ होने पर भी कीट कालिमा सोना नहीं है। ये भरोसे के बल पर हम उसे अग्नि में डालते हैं, और अगर ऐसा हो कि भैया देखो कोशिश करके देखो क्या जलता है क्या बचता है, ऐसा संदेह भी अपने को हो जाए कि सोना भी जल सकता है कीट कालिमा भी बच सकती है, तो कोई सोने को उस पाषाण को अग्नि में डालने की रिस्क कभी नहीं लेगा। आचार्य यहां पे कितनी गजब की बात कही, अरे विभाव ए वस्तु नो मूल स्वरूप न होए, क्योंकि अगर वस्तु का मूल स्वरूप हो तो फिर विभाव को कभी अलग नहीं किया जा सकता। देखो निगोद के अंदर जीव रहा, विभाव की कितनी ही प्रचुरता होने के बाद भी अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान का उघाड़ वहां पर भी खिला रहा, यानी संपूर्ण वस्तु, वस्तु में तो विभाव है ही नहीं, लेकिन विभाव जो होता है वो भी मर्यादित तो होता है। ऐसा विभाव नहीं होता कि वस्तु के संपूर्ण स्वरूप का संपूर्ण रूप से नाश कर दे, अक्षर के अनंत में भाग भी ज्ञान का उघाड़ वहां पर खिला रहता है। नक्की तो करो, इससे क्या बात नक्की होती है, वस्तु का मूल स्वरूप नहीं होता, एक बात, और जो स्वरूप होए ते विभाव रूप न होए। स्वरूप भी कहें और विभाव रूप भी कहें, आ देखो अपने को मच्छर ने काट खाया, और मच्छर ने काट खाया तो अपने को बुखार आया। अब बुखार आने पर अपन मनुष्य की परिभाषा ये बना दें कि मनुष्य उसे कहते हैं जिसे बुखार होती है, ये मनुष्य की परिभाषा है। बुखार किसको होती है, बुखार किसको होती है, कि बुखार मनुष्य को ही होती है, मनुष्य शरीर में ही बुखार होती है, लेकिन मनुष्य शरीर में बुखार होने पर भी वो बुखार मनुष्य शरीर का उत्पादन नहीं है, वो किसका उत्पादन है, कि वो उस मच्छर का उत्पादन है। तो अपन लोग क्या करते हैं कि दवा इंजेक्शन वगैरह लेकर के बुखार का अभाव करते हैं, और बुखार का अभाव करके स्वस्थता का अनुभव करते हैं, और अपने को ये लगने लगे कि भैया मैं तो बुखार वाला ही हूं, बुखार मिटेगी तो मैं मिट जाऊंगा, तो कौन इलाज करेगा, मैं तो राग रूप ही हूं, मेरा स्वरूप ही राग रूप है। कि अगर तुम ऐसा मानोगे कि मेरा स्वरूप राग रूप ही है, तो राग का अभाव होने पर आत्मा का अभाव अवश्यंभावी है, जिनागम साक्षी है। अनंत जीव राग का अभाव करके सिद्धालय में गए हैं, लेकिन एक उदाहरण पुराण में ऐसा निकाल के बताओ कि जिसमें यह लिखा हो कि राग ने जीव का अभाव कर दिया, जीव ने राग का अभाव किया, यह तो उदाहरण मिलेगा, लेकिन राग ने जीव का अभाव किया ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा। और इसका प्रबल प्रमाण है निगोद दशा, क्योंकि निगोद दशा से ज्यादा राग कहीं हो नहीं सकता, निगोद दशा से ज्यादा विभाव कहीं हो नहीं सकता, कि इतने विभाव के बीच भी चैतन्य के ज्ञान का टिमटिमाता दिया वहां पर भी जल रहा है, भले ही अक्षर के अनंत में भाग हो। विभाव कितना भी हो जाए वो स्वभाव को सर्वथा आवृत कर दे, स्वभाव को सर्वथा ढक दे, ऐसा तीन काल में नहीं होता। ये नक्की अपने को करना पड़ेगा, ये बहुत गंभीर चर्चा है वास्तव में। विभाव तो दुखदायक छे ने हूं तो निर्मल स्वभाव छू। बोलो विभाव में दुख लगता है कि नहीं लगता है? अरे विभाव में दुख नहीं लगता हो तो एक विभाव को बदल करके दूसरा विभाव क्यों करते हैं? बोलो अभी अपन स्वदेह सुन रहे हैं, तो स्वदेह सुनने का भाव ये सुख रूप है कि दुख रूप है? घर गृहस्थी की बात नहीं कर रहा, स्वदेह सुनने का भाव है ना, बहुत अच्छा भाव है, प्रशस्त भाव है, तो ये प्रशस्त भाव सुख रूप है कि दुख रूप? बोलो साहब, सुख रूप है कि दुख रूप? तो कोई कहेगा कि भैया ये तो सुख रूप है, तो मैंने कहा सुख रूप है तो 9 बजे के बाद बात करना, 9 बजे के बाद बात करना, कितना सुख रूप है पता लगेगा। आ गया, ये राग ये विभाव बदल करके दूसरा विभाव हमने किया, अपन आलती पालती लगा के बैठे और अपन ने अपनी अपनी पोजीशन बदली, तो बदली वो किस बात को बताता है, तो उस पोजीशन में अपने को तकलीफ हुई, क्योंकि तकलीफ हुए बिना वो पोजीशन बदलती नहीं। ये विभाव का बदला ना, अभी अपन सुनने का राग कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद 9 बजे का जैसे ही टाइम होगा ये राग टूट करके दूसरा राग हो जाएगा। ये बात अलग है कि सुनने के समय भी किसी को दूसरा राग होता हो तो उसकी भगवान जाने, उसकी बात नहीं करते लेकिन ये बदलेगा ना। और अभी अपन घर का राग कर रहे थे, थोड़ी देर पहले खाने का राग, घर का राग और अनेक प्रकार के राग में प्रवर्तन कर रहे थे, वो राग बदल करके यहां आए। जिन मंदिर का राग आया, यदि उस राग में सुख होता तो सुख का त्याग करके दुख में कौन आना चाहेगा, बताओ जरा। ये नक्की होता है इससे कि भाई ये राग है ना, ये दुख है, कैसा भी राग हो वो निर्मल स्वभाव नहीं हो सकता, तो मैं तो जुदा हूं। आम अनेक रीते विचारे, कैसे विचारे कि बस जैसे जैसे राग से भेद ज्ञान हो उस तरह से विचार करे, ये मेरा स्वरूप नहीं हो सकता। आ गया, आगे देखो इसमें बहुत अच्छा लिया है। राग आवे ते क्षणे जो हूं जुदो छू, ऐसा नहीं कि राग आवे फिर समाधान करे, राग के क्षण ही मैं राग से जुदा हूं, बुखार के क्षण में ही मेरा स्वरूप, शरीर की बात कर रहे हैं अभी, बुखार जैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि बुखार आया है, मैं तो पहले से था, बुखार है और ये बुखार चला जाएगा, बुखार जाने के बाद भी मैं तो रहूंगा, ये तो आगंतुक भाव है, आने और जाने वाले हैं, आने और जाने वाले हैं, मैं तो सदा टिकने वाला हूं। वीतराग स्वभाव हूं, राग की आकुलता ते मारो स्वरूप नथी, निषेध आना चाहिए। ये निषेध आने के बजाय अगर हम राग में अच्छे बुरे की कल्पना करने लगे कि नहीं नहीं भाई ये राग तो थोड़ा करने, ये तो राग तो अच्छा है, ये राग तो अच्छा है, राग में अच्छे बुरे की कल्पना जिसने की, परमात्म प्रकाश का एक बहुत बढ़िया दृष्टांत गुरुदेव श्री देते थे कि जिसने राग को उपादेय माना वास्तव में उसने स्वभाव को हेय माना। क्यों? क्योंकि दो विरुद्ध चीजें एक साथ उपादेय नहीं हो सकती। राग उपादेय लगता है तो तुझे क्या लगेगा, स्वभाव हेय लगेगा। राग में भेद नहीं करना कभी भी, राग राग है उसमें भेद मत डालना, राग से भेद कर लेना। नहीं नहीं ये राग तो अच्छा है, ये राग तो बुरा है, इसका एक उदाहरण आता है कि भैया एक महीने के दो पक्ष होते हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में क्या होता है, रात्रि अंधकारी अंधकारी होती है, अंधेरी रात्रि होती है, और शुक्ल पक्ष में क्या होता है, उजली रात्रि होती है, बराबर है। तो ये जो अंधेरी रात्रि और उजली रात्रि ये किसके भेद हैं, ये कि ये रात्रि के भेद हैं। अभी हमको ये बताओ कि जैनी को कौन सी रात्रि में भोजन चलेगा, आ गया समझ में, कौन सी रात्रि में जैनी को भोजन चलेगा। कह रहे कैसी बातें करते हो, तो बस एक कैसी बातें करते हो तो ऐसी बातें यहां है कि तुम ये राग में भेद कैसे डालते हो। राग आवे तेज क्षण हूं जुदो छू, बार बार ये खटक अंदर में रहनी चाहिए, मैं तो इससे भिन्न हूं, ये मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप तो ज्ञान और आनंद है। राग में आनंद, राग में ज्ञान नहीं और राग में सुख नहीं, राग ज्ञान और सुख से शून्य है। और मैं कैसा चैतन्य हूं कि अरे मैं तो ज्ञान और सुख का ही बना हूं, तो जिसमें ज्ञान और सुख नहीं वो मेरा स्वरूप कैसे हो सकता है, इस तरह विचार करें। भेद ज्ञान करना है ना, 294 नंबर की गाथा पढ़ो कि ये जो राग और आत्मा एक मेक दिखाई देते हैं इसका कारण क्या है, तो उन्होंने कहा चैत्य चेतक संबंध की अति निकटता। एक वस्तु तो नहीं, माने राग वो एक अलग वस्तु है और जीव अलग वस्तु है, लेकिन जिस समय राग हो रहा है उसी समय ज्ञान हो रहा है, माने ज्ञान का परिणमन और राग का परिणमन एक ही साथ हो रहा है, इधर राग की पर्याय उत्पन्न हुई और इधर ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुई, और ज्ञान की पर्याय में वो राग जानने में आया। अज्ञानी को भेद ज्ञान नहीं है, तो राग की पर्याय में ज्ञान जानने में आया था, तो सचमुच में तो क्या हुआ, वो गेय हुआ। लेकिन अज्ञानी क्या मानता है कि राग जानने में आया तो गेय ज्ञायक संबंध की अति निकटता के कारण, भेद विज्ञान के अभाव के कारण अज्ञानी को रागमय ही आत्मा दिखाई देता है, मानो मैं ही रागमय हो गया, जबकि वो तो गेय था। पंडित जी ने लिखा मोक्ष प्रकाशक में कि आश्रव से आत्मा को भिन्नता क्यों नहीं होती, तो पंडित जी साहब ने बहुत अच्छा वाक्य लिखा। उन्होंने लिखा कि राग और आत्मा की उत्पत्ति का काल एक है, एक बात, और राग और ज्ञान के उत्पत्ति का क्षेत्र एक है। जिन आत्मा के जिन असंख्यात प्रदेशों में ज्ञान की पर्याय पैदा हो रही है, वहीं असंख्यात प्रदेशों में राग की पर्याय पैदा हो रही है ना। तो एक तो क्षेत्र एक है, वो अलग विषय है, अभी उपयोग में उपयोग वाली गाथा में क्षेत्र भिन्नता की भी चर्चा की, अभी वो चर्चा अपन नहीं कर रहे कि एक तो ये क्षेत्र एक है, और इधर जिस समय राग हो रहा है उसी समय ज्ञान भी हो रहा है, अथवा जिस समय ज्ञान हो रहा है उस समय राग भी हो रहा है। तो एक क्षेत्र में और एक ही काल में इन दोनों की उत्पत्ति होने की वजह से राग से भेद ज्ञान हो नहीं सकता, और भेद ज्ञान होने का कारणभूत जो विचार है, पंडित जी साहब कहते हैं मिथ्या दर्शन के जोर से वो विचार हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या कि राग से भिन्नता का विचार भी जिन्हें नहीं आता हो तो समझ लेना मिथ्या दर्शन की तीव्रता है। क्यों तीव्रता है कि दो तत्व एक दिखाई दे रहे हैं इसे, राग है वो आश्रव तत्व है, आत्मा है वो जीव तत्व है, राग है वो बंध तत्व है, आत्मा है वो जीव तत्व है। जीव तत्व में बंध तत्व नहीं है, और बंध तत्व में जीव तत्व नहीं है, आश्रव तत्व में जीव तत्व नहीं है, और जीव तत्व में आश्रव तत्व नहीं है। अरे तभी तो नव तत्व भिन्न सिद्ध होंगे। अगर एक तत्व दूसरे तत्व रूप हो जाए, जैसे द्रव्यों में अपन करते कि नहीं करते, कि अगर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जाए तो क्या होगा कि द्रव्य का ही नाश हो जाएगा, ये अपन करते कि नहीं करते। लोक में जैसे द्रव्य में यह व्यवस्था है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, अरे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ठीक यही व्यवस्था तत्व में लगाओ कि एक तत्व दूसरे तत्व रूप नहीं होता और एक तत्व दूसरे तत्व का कर्ता नहीं है। इसलिए आत्मा कभी भी आश्रव रूप नहीं होता, कभी भी बंध रूप नहीं होता, और आश्रव और बंध रूप हुए बिना उस रूप होवे तो उसका कर्ता होवे, ये नियम है ना, कि उस रूप नहीं होवे तो उसका कर्ता नहीं होवे। जैसे रोटी बनती है तो आटे से बनती है, अब कोई बहन कहे कि रोटी मैंने बनाई तो जिनवाणी क्या कहती है कि तुम्हें रोटी बनाने के लिए रोटी रूप होना पड़ेगा, उसमें तन्मय होना पड़ेगा। तन्मय का मतलब होता है तत्मय, तत्मय माने उसमय, तो उसमय होने का मतलब क्या हुआ कि रोटी बनाने के लिए तुम्हें रोटीमय होना पड़ेगा। रोटीमय होना पड़ेगा इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हें अपनी वर्तमान अवस्था का नाश करना पड़ेगा। आ गया, कौन अपना अस्तित्व मिटा के ऐसा करना चाहेगा। ऐसे यहां पे कहते हैं कि भाई जीव तत्व है ना, तो जीव तत्व राग रूप नहीं होता क्योंकि वो आश्रव है, आश्रव रूप जीव तत्व नहीं होता, और यदि जीव तत्व आश्रव तत्व रूप हो जाए तो जीव की सत्ता का नाश हो जाएगा। जीव तत्व आश्रव तत्व रूप नहीं होता, इसलिए जीव तत्व आश्रव तत्व का कर्ता नहीं है। इसी तरह बंध में लगाना, और जिनवाणी तो यहां तक कहती है कि संवर निर्जरा और मोक्ष का भी भगवान आत्मा करता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बंध का करता हो वो मोक्ष का करता हो, जो बंध का करता नहीं है वो मोक्ष का भी करता नहीं है, ऐसा अकर्ता ज्ञायक स्वभाव है। लेकिन यहां अभी राग से भेद ज्ञान की बात चल रही ना, तो राग से भेद ज्ञान की बात में राग का निषेध कर रहे हैं, निर्मल पर्याय का अभी वो नहीं बात कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो यहां तक जाएगी, और इसीलिए 320 नंबर की गाथा में जाने ही कर्मो दय निरजरा बंध त्यों ही मोक्ष को, बंध जो बंध को करे वो मोक्ष को करे। ये सब बातें जिनागम में खोल खोल के अपने को पढ़ाई, गुरुदेव श्री ने बहुत स्पष्टीकरण इन सब बातों का किया है, परमात्म प्रकाश का उद्धरण देकर के किया कि जीव किसे कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो न उपस्था है न मरता है न बंध और मोक्ष को करता है, हे जीव तू उसे जीव जान, जिनेन्द्र परमात्मा उसको जीव कहते हैं। उसमें उदाहरण दिया कि एक आदमी जो आज तक कभी जेल नहीं गया, कभी नहीं गया, और उससे कोई पूछे कि भाई साहब आप कब छूटे जी, कब छूटे आप, तो वो क्या कहेगा, करे तुम मेरी मखौल उड़ाते हो, वो कोप करता है। तो ये कहेगा हम छूटने की बात कर रहे हैं ना, गुस्सा क्यों हो रहे हो इतने, तो भाई साहब छूटता वो है जो बंधता है। आया किसी ब्रह्मचारी जी से पूछो, बाल ब्रह्मचारी जी से पूछो कि भाई साहब आपकी बारात कहाँ गई थी, वो अलग बात है कि नेमिनाथ की बारात गई थी, फिर भी बाल ब्रह्मचारी थे। लेकिन बताओ अगर कोई ब्रह्मचारी जी से ये पूछे कि आपकी बारात कहाँ गई थी, तो ब्रह्मचारी जी का सम्मान करता है कि अपमान करता है, उन पे लांछन लगाता है। इसी तरह भगवान आत्मा को राग का कर्ता कहना ये अकर्ता ज्ञायक पर लांछन है, क्योंकि जो आत्मा का स्वरूप नहीं, जो आत्मा के आश्रय से पैदा नहीं होता, उसका कर्ता तुम आत्मा को ठहरा रहे हो, उस मैं आत्मा को मान रहे हो। कहते भाई ये आत्मा के ऊपर कलंक लगाना है, आत्मा पर लांछन लगाना है, आत्मा का अवर्णवाद करना है, और आत्मा के अवर्णवाद का फल दर्शन मोह का तीव्र बंद है, संसार परिभ्रमण चालू रहेगा। सोचना जरा, बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर तत्व है। क्या आत्मा का स्वरूप है, देखो कितना बढ़िया लिया, वीत राग स्वभाव छू, मैं तो कैसा हूं कि मैं तो वीतराग स्वभाव, मैं तो अराग स्वभाव हूं, राग नी आकुलता ते मारू स्वरूप नथी, हूं तो शांत स्वरूप छू। एक एक शब्द में कितनी मधुरता, राग की आकुलता है लेकिन राग की आकुलता राग में है, मेरे स्वरूप में राग की आकुलता नहीं है क्योंकि मैं शांत स्वरूप हूं। कभी विचार आया अपने ऐसे स्वरूप का, कि जब सारे जगत के जीव अपने को रागी द्वेषी मोही क्रोधी है ना अनेक अनेक उपाधियों से अलंकृत कर रहे हों, और उस समय ज्ञानी के ये बोल निकले कि ये तेरा कोई स्वरूप नहीं है, तू तो वीतराग स्वरूप है, तू तो ज्ञान और आनंद स्वरूप है, अपने को कितना आह्लाद आना चाहिए। अरे अनादि काल से इस राग के संग में पड़कर मैंने अपने को रागी माना, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं आज तक ना तो कभी रागी हुआ, ना वर्तमान में रागी हूं, और ना अनंत काल में कभी रागी होऊंगा। मैं तो ज्ञान स्वरूप था, ज्ञान स्वरूप हूं, और ज्ञान स्वरूप ही रहूंगा। ये बात अलग है कि मुझे आज तक अपने ज्ञान स्वरूप की खबर नहीं थी, अब खबर हो गई, तो जब जाग जाए तभी है सवेरा, न समझो अभी मित्र कितना अंधेरा है, कि नहीं। हाँ ये देखो कि ये स्वरूप हूं, वीतराग स्वरूपे छू ज्ञायक छू, आ रागनी विकृति ते मारो स्वरूपज नथी, कितना निषेध किया, ये मेरा स्वरूप ही नहीं है। राग का जहां निषेध कर दिया वहां संयोग की बात क्या करना, राग तो आत्मा की एक समय की अवस्था में है भी, भले ही स्वरूप नहीं है लेकिन है कहां वो, आत्मा की एक समय की अवस्था में, लेकिन ये संयोग जिनको हम अपना मानते हैं, जिनको हम छाती से लगाए हुए हैं कि ये संयोग तो आत्मा के द्रव्य, आत्मा के गुण, आत्मा की पर्याय में से किसी में नहीं है। आत्मा का द्रव्य क्षेत्र काल भाव और संयोगों का द्रव्य क्षेत्र काल भाव सर्वथा भिन्न भिन्न है। ये पुद्गल के पिंड हैं और भगवान आत्मा चैतन्य का पिंड है। राग ही जहां अपना नहीं है वहां संयोग अपना कैसे होगा? हमने क्या किया, हमने राग से यारी की, हमने राग से मित्रता की। तो जब राग से मित्रता करी तो राग की मित्रता जिसके साथ थी, क्योंकि राग भी किसी पर के लक्ष्य से होता है ना, तो राग की मित्रता जिसके साथ थी उस संयोग के प्रति अपने आप अपना एकत्व बिना नहीं रहेगा। जब राग को अपना मानेंगे तो राग जिसको लक्ष्य करके हुआ उन संयोगों को भी अपना माने बिना नहीं रहेंगे। जहां हमने राग से ही एकत्व तोड़ दिया तो अभी संयोगों से एकत्व तोड़ना बाकी है कि नहीं? करे जहां राग ही अपना, जहां राग अपना नहीं, लोक में बोलते हैं ना बारह महीनों में कि जहां देह अपनी नहीं वाहन अपना कोई, इसी तरह यहां लगाओ कि जहां राग अपना नहीं देह कहां से होए। अब जो जो भी पदार्थ अपने दिखाई देते हैं उन सब में लगाओ कि ये कहां से अपना हो, ये कहां से अपना हो, ये कहां से अपना हो। इस तरह भेद ज्ञान मूलक विचार करने से ये मैं नहीं हूं, लेकिन ध्यान देना ये मैं नहीं हूं इतने मात्र से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें अभी नास्ति तो आई, लेकिन अस्ति क्या है? उस अस्ति के ग्रहण किए बिना इस नास्ति का कोई मूल्य नहीं है। लोक में भी एक बात है कि अनंत नास्तियों की नास्ति करने के बजाय एक अस्ति को पकड़ लो। अपन लोग बंबई में रहते हैं मान लो, ठीक है, अब बंबई में कितने बंगले होंगे, गिनती होगी कुछ? बहुत सारे हैं। अभी क्या करें अपन कि सब पहले ये बंगला मेरा नहीं, 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 इधर का बंगला मेरा नहीं, इधर का। अगर ऐसे पूरे एक एक बंबई के बंगले को ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं करते जाएंगे समय खत्म हो जाएगा, लेकिन बंगले पूरे नहीं होंगे। और हमने ये बंगला मेरा है ऐसा मान करके उस बंगले में प्रवेश किया तो बंबई के सारे बंगले मेरे नहीं है, ये बात ऑटोमेटिक उसमें आ गई कि नहीं आ गई? कि एक एक का अलग अलग त्याग करना पड़ेगा है? अरे स्व को ग्रहण कर लिया, हो गया सब त्याग। ये ग्रहण पूर्वक त्याग की विधि है। स्वभाव का ग्रहण वही राग का त्याग है ना। राग के त्याग की बात तो इसलिए कही जाती है कि हम राग से परिचित हैं, तो परिचित की ओर से कथन किया जाता है। सचमुच में राग का त्याग नहीं करना, स्वभाव का ग्रहण करना, इसी का नाम राग का त्याग है। 34 नंबर की गाथा में समय सार के अंदर ही लिखा कि इस ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा को राग का त्याग भी नाम मात्र है। क्या मतलब? कि ये तो स्वरूप का ग्रहण किया तो राग उत्पन्न नहीं हुआ, राग उत्पन्न नहीं हुआ तो उसे बोला गया कि राग का त्याग किया। सच में राग का त्याग करना है? स्व का ग्रहण, उसी का नाम राग का त्याग है। कथन की विवक्षा किसी भी ओर से आवे, गुरुदेव श्री ने एक मंत्र अपने को दिया, क्या? कि कथन की विवक्षा किसी भी ओर से आवे हमें उसे स्वभाव की ओर ले जा करके खतौनी करना। स्वभाव से बात उठनी चाहिए, स्वभाव से बात उठेगी तो सारी बातें यथार्थ होगी। और स्वभाव को अलग रख करके राग का त्याग करो, कषाय का त्याग करो, इसका त्याग करो, उसका त्याग करो, इसको छोड़ो, उसको छोड़ो, कि स्वभाव को ग्रहण किए बिना इनमें से कोई छूटता नहीं है। क्या होगा? कि पहले इनको मैं ग्रहण करता हूं, ऐसे अभिप्राय से मिथ्यात्व का सेवन होता था, अब मैं इनका त्याग करता हूं, ऐसे अभिप्राय से मिथ्यात्व का सेवन होगा। मिथ्यात्व दोनों जगह रहेगा, चाहे पहले अपने को मैंने ये ग्रहण किया, मेरा ये मकान है, मेरा ये है, मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये, हमने इस रूप में ग्रहण किया, तब भी मिथ्यात्व का सेवन कर रहे थे। अभी स्वभाव का ग्रहण नहीं हुआ और मैंने इसका त्याग कर दिया, 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 क्या मतलब हुआ इसका कि भाई साहब क्या ये पर पदार्थ तुम्हारा स्व है, क्या इस पर पदार्थ के तुम स्वामी हो? अरे आत्मा पर के ग्रहण त्याग से रहित त्यागोपादान शून्यत स्वभाव पड़ा है, उसकी ओर नजर नहीं। मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, कि क्या छोड़ दिया तूने? तूने सचमुच स्वभाव छोड़ दिया, स्वभाव छोड़ा है। नियम सार में तो कहा कि एक त्यागी है, कि हां है, लेकिन किसका? तो उन्होंने कहा कि स्वधर्म का त्यागी है ये। गंभीर कथन किया जाता है, राग के त्याग करो, ये कथन है, प्रैक्टिकल पद्धति ये नहीं है। राग का त्याग करने की प्रैक्टिकल पद्धति क्या होगी मुझे बताओ जरा? भूतकाल का राग उत्पन्न होकर के अपने आप नष्ट हो गया, उसका आप त्याग क्या करोगे? वो तो खुद ही चला गया। भविष्य काल का राग अभी उत्पन्न ही नहीं हुआ, उसका आप त्याग कैसे करोगे? जो उत्पन्न ही नहीं हुआ उसका त्याग कैसे करोगे? वर्तमान का एक समय का राग हमारे पकड़ में असंख्यात समय बाद आता है, और जब पकड़ में आता है उसके पहले उसका अभाव हो जाता है, तो वर्तमान राग का भी त्याग कैसे करोगे? पद्धति क्या है, पद्धति क्या है फिर? तो उन्होंने कहा कि अरे जिस समय स्वभाव का ग्रहण होता है, तो स्वभाव का ग्रहण होते ही राग की उत्पत्ति नहीं होती, इसका नाम नास्ति से राग का त्याग कहा जाता है। सच में जिसका त्याग कहा जाता है वहां वो उत्पन्न ही नहीं हुआ है, उसको त्याग कहा जाता है। बोलो, यह है पद्धति। हम बोल दे कुछ भी, लेकिन प्रैक्टिकल तो सोचें उसके बारे में। पुद्गल का त्यागी अपने को मानते हैं, तो पुद्गल का त्यागी अपने को मानते हैं तो तुम पुद्गल के स्वामी हो क्या? आचार्य भगवान ये कहते हैं कि पुद्गल के साथ तुम्हारा कौन सा संबंध है? सो स्वामी संबंध है, कर्ता कर्म संबंध है, भोक्ता भोग्य संबंध है, कौन सा संबंध है? कि जब कोई संबंध ही नहीं है, नास्ति सर्वोपि संबंध पर द्रव्य आत्म तत्वयो, कि पर द्रव्य का साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं है, जब संबंध नहीं है तो मैंने पर द्रव्य का त्याग किया, ग्रहण की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने इस अमुक पर द्रव्य का त्याग कर दिया, कि ये तुमने उस पर द्रव्य के साथ अपना स्वस्वामी संबंध बनाया, भले ही त्याग के नाम पर बनाया। मैं इसके लिए एक बहुत उदाहरण देता हूं वैसे, कि देखो दो दुकानें हैं, होता है ना, दुकानें बदलते कि नहीं बदलते? अपन दुकान की फर्म का नाम बदलते हैं, क्यों बदलते हैं? कि गवर्नमेंट के टैक्स को बचाने के लिए या जो भी हिसाब किताब का सेटलमेंट करने के लिए अपन लोग दुकान की फर्म का नाम बदलते हैं। लेकिन प्रोप्राइटर कौन होता है? प्रोप्राइटर तो वही होता है। इसी तरह अभी तक अनादि काल से आज तक हमने परद्रव्य के राग के ग्रहण की फर्म खोल रखी थी। अभी तक क्या कर रखा था? कि राग के ग्रहण की फर्म खोल रखी है, पर द्रव्य के ग्रहण की फर्म खोल रखी है। क्या मतलब? कि हमारी फर्म का नाम क्या है? कि ग्रहण चंद एंड ब्रदर्स हमारी फर्म का नाम है। अभी क्या हुआ? अभी धर्म की धुन चढ़ी। अब धर्म की धुन चढ़ी तो धर्म का स्वरूप तो समझ में आया नहीं, और धर्म जब त्याग की बात आचार्य भगवान ने कही, राग का त्याग करो, कषाय का त्याग करो, परद्रव्य के संयोग का लक्ष्य छोड़ो, ये करो वो करो, तो हमने क्या किया? मैंने इसको छोड़ा, 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 और हमने अपनी फर्म बदल ली, और फर्म चंद, फर्म का नाम हो गया त्याग चंद एंड ब्रदर्स संस, जो भी लगाना है लगा लेना। लेकिन उससे पूछा कि प्रोपराइटर कौन है इन दोनों का? कि प्रोपराइटर तो भाई साहब मिथ्यात तो कुमार ही है, समझ लेना ये। हाँ यार, पद्धति पे आओ, पद्धति। देखो भाई, जिनागम का कोई काम व्यवस्थित पद्धति के बिना नहीं होता। गुरुदेव श्री एक उदाहरण देते थे, हलवा बनाने की एक पद्धति होती है, पेटेंट उदाहरण है, सीरा। क्या पद्धति होती है? तो वो कहते थे कि भाई पहले आटा को घी में सेको, है ना, और जब वो सिक जाए अच्छा सा, तब उसमें गुड़ का, शक्कर का पानी डालो और फिर उसको सेकते जाओ, हलवा तैयार होगा। ये पद्धति है। अब कोई सोचे कि अच्छा अच्छा काय का, आटा ही तो सेकना है ना, तो आटा सेकने के लिए ये 600-700-800 रुपए का किलो का घी बर्बाद करने का क्या मतलब है? तो क्या करो, आटा तो पानी से भी सिक जाएगा, तो और डालना तो पानी है ही, कि गुड़ का पानी, शक्कर का पानी, जो भी पानी डालना है वो डालना तो बाद में भी है, और घी भी डालना है। तो अपन ऐसा करते, क्रम बदल लो इसका, कि क्या करो कि पहले आटा को घी और पानी के, घी और नहीं, उसके गुड़ और शक्कर के पानी में सेको, और फिर क्या होगा कि फिर उसमें घी डाल दो। गुरुदेव कहते थे लुपड़ी भी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि उसकी बनाने की भी एक विधि है, वो भी बिना विधि के नहीं बनती, है ना। तो कोई भी कार्य होगा वो विधि से होगा, और हमने क्या गलतियां की आज तक, कि हमने विधि को समझे बिना ज्ञानियों के शब्दों को पकड़ा और शब्दों के अर्थ अपनी मनमर्जी से निकाले और हम मार्ग की कल्पना कर बैठे। ऐसे मार्ग कभी हाथ में नहीं आता। यहां पर फिर अगले पैरा में देखो, कहते हैं मुमुक्षु ने फिर प्रश्न किया, जब इतनी बात बहन श्री ने कही, तब मुमुक्षु ने फिर प्रश्न किया कि राग थी भेद पाड़वामा मुश्किली तो देखा छे, कि साहब कोशिश बहुत करते हैं लेकिन बहुत मुश्किल दिखता है, राग से भेद पाड़ने में बहुत मुश्किल दिखता है, क्या करें। कि राग के राग वक्ते राग थी निराळू जान नारो ते हूं छू, ए अधुरु तो पड़े छे, कठिन तो पड़ता है, छता आप ना समझाव्या पछी एटलू ख्याल आवे छे के सविकल्प दशामा हजू घणु करवानु रही जाए छे। प्रश्न समझ में आ गया? उसका शिष्य का क्या, बहुत कठिन लगता है राग से भिन्न पढ़ना, बहुत कठिन लगता है, लेकिन आपने जब समझाया तो अभी हमें ये लगा, क्या लगा, कि अभी तो भाई साहब निर्विकल्प दशा की बात तो छोड़ो, सविकल्प दशा में भी बहुत करना बाकी रह जाता है, ऐसा हमको लगता है। ये उस मुमुक्षु ने अपना अभिप्राय इस उत्तर के संबंध में रखा। उसका बहुत शानदार उत्तर दिया कि जेने सहज होय तेने विचार करवो पड़तो नथी। सहज हो उसको विचार नहीं करना पड़ता, और बार बार विचार करना पड़े तो समझ लेना वो सहज नहीं है। वचनामृत में भी इस तरह का एक बोल आया है, क्या आया, कि मुमुक्षु को सहज दशा भेद ज्ञान को बार बार याद करके घोखना नहीं पड़ता। आया कि नहीं आया, एक बोल आया ना, घोखना नहीं पड़ता, वो एक सहज परिणति हो जाती है उसकी। जैसे अपन अपने शरीर के नाम को कितनी बार याद करते हैं, सुबह उठ के याद करते हैं ना, भैया अभी 12, 8 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे अपन सो के उठे, ऐसा तो नहीं नाम भूल गया, जरा डायरी में देख लूं मेरा नाम क्या है। आज तक किया ऐसा अपन ने कभी है? किया अभी? क्यों क्यों नहीं हुआ ऐसा, क्यों नहीं होता? क्योंकि ये सहज है। और जिनको स्टेज पर ड्रामा करना होता है, समझना, वही आदमी है, स्टेज पर ड्रामा करना होता है, और आज सुबह इस ये नाटक करना है, दोपहर को इतनी बजे से इतने बजे के शो में ये नाटक करना है, और शाम को एक नाटक ये करना है, उसमें ये पार्ट करेगा, उसमें ये पार्ट करेगा, उसमें ये पार्ट करेगा, और तीनों पार्टों में अलग अलग नाम होंगे, तो बोलो वो नाम याद रखने पड़ते कि नहीं रखने पड़ते, अपने भी और दूसरों के भी, क्योंकि सबके नाम बदल गए ना। नहीं तो पता लगा कि पार्ट तो कर रहा था रामायण का और डायलॉग बोल गया महाभारत का, तो क्या होगा। आगे समझ में, तो सहज दशा उसको घोखना नहीं पड़ता, विचार नहीं करना पड़ता। आगे आतो जे अभ्यास करे छे तेनी बात छे, केवी रीते करवू ते खरे खर तो पोताने विचारवानू छे। मार्ग ज्ञानियों ने बता दिया कि राग से भेद ज्ञान करके राग से पृथक चैतन्य का अनुभव करना, ये तेरे को करना है। अब कैसे करना भेद ज्ञान, कैसे करना कि लोक में करते कि नहीं करते? देखो दो भाई हो और एक साथ रहते हो, तो एक साथ जब तक रहते हो तब तक उनके किसी भी चीज में कोई भेद नहीं होता, होता है कोई भेद नहीं होता, कोई कुछ भी ले जाए, कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी करे। और अब उनमें बंटवारा हो गया, अब बंटवारा होने के बाद भले वो एक ही छत के नीचे रहते हैं, क्योंकि अभी मकान अलग अलग नहीं बने, मकान बनने में टाइम लगेगा, अब एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन एक जो विभाजन की रेखा खिंच गई है ना, समझ लेना बस, लोक में अपन सब समझदार हैं, ज्यादा उदाहरण लंबाने की जरूरत ही नहीं इसमें। आ गया, ऐसा होता है कि नहीं होता है भाई? ये यहां पे कि खुद को विचार करो कैसे भेद ज्ञान करना है। गुरुदेवे घणु समझाव्यू छे, हर न्याय गुरुदेव की वाणी में स्पष्ट हुआ है। राग आत्मा का क्यों नहीं है, तो एक जो 49 से ये अपनी है ना गाथा, 50 से 55 गाथा है, 29 बोल का उकरड़ा बोलते कि नहीं बोलते जिसे, है ना, तो उसमें 29 बोलों से भेद ज्ञान कराने में एक सूत्र सब में दिया। क्या दिया? जिसे राग से भेद ज्ञान कराना है तो उनने क्या किया कि भेद ज्ञानियों को राग से भिन्न जीव उपलब्ध मान है, अनुभूति में यह दिखाई नहीं देता। जो आत्मा की अनुभूति में दिखाई नहीं दे वो सब पर है, जो आत्मा की अनुभूति में दिखाई दे कि वो स्व है। आत्मा की अनुभूति में आत्मा दिखाई देता है, आत्मा की अनुभूति में राग दिखाई नहीं देता, आत्मा की अनुभूति में कर्म दिखाई नहीं देता, आत्मा की अनुभूति में शरीर दिखाई नहीं देता। राग से भिन्न, कर्म से भिन्न, शरीर से भिन्न भगवान आत्मा सबको अनुभूति में उपलब्ध माने, जितने ज्ञानी हुए सबको वो आत्मा उपलब्ध माने। अगर आत्मा राग युक्त होता, अगर आत्मा कर्म युक्त होता, अगर आत्मा शरीर युक्त होता, तो आत्मा की अनुभूति में राग युक्त, शरीर युक्त, कर्म युक्त आत्मा की अनुभूति होनी चाहिए, लेकिन अनुभूति होती है चैतन्य की। इससे क्या निष्कर्ष निकला? कि इससे यह निष्कर्ष निकला कि आत्मा चैतन्य स्वरूप है, राग स्वरूप, कर्म स्वरूप, शरीर स्वरूप, देह स्वरूप, मन स्वरूप, वाणी स्वरूप, है ना, ये 29 बोल स्वरूप, ये भगवान आत्मा नहीं, भेद ज्ञानियों को उपलब्ध माने। कितना सीधा सा मंत्र है, आ गया, बहुत गजब की बात है कि तेनी बात से घणु समझाव्यू छे, छता आ रीते अभ्यास करे तो विकल्प थी छूटा पड़वानो प्रसंग आवे छे, है ना। क्या कि किस रूप में विचार करे तो कि बस एकमात्र स्वरूप की महिमा, राग से भिन्न मैं चैतन्य चमत्कार पदार्थ हूं, ऐसे अपने स्वरूप की महिमा आवे, बस काम हो गया अपना। अनुभूति की प्रक्रिया, अनुभूति के पहले, कल की चर्चा में एक बहुत अच्छा प्रश्न आया था कि साहब अनुभूति के पहले का अंतिम विकल्प कौन सा होता है, प्रश्न आया था, सुना होगा आप लोगों ने, आया था। और बहिन श्री के वचनामृत में भी, अंतिम वचनामृत में जो प्रश्न है ना लास्ट में, अंतिम अंतिम वचनामृत सारे प्रश्नोत्तर रूप है, वहां पर भी एक इसी तरह का प्रश्न आया कि अनुभूति के काल में अंतिम विकल्प कौन सा होता है। बहुत शानदार उत्तर दिया था उसका कि अंतिम विकल्प का कोई नियम नहीं है। क्यों नहीं है नियम? जब विकल्प तुमको हो रहा है और तुम ये नहीं बता पा रहे हो कि अंतिम विकल्प कौन सा है, निर्विकल्प होने के अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय वाला अंतिम विकल्प कौन सा था। उन्होंने जो उत्तर दिया, मैं एक आपको दूसरे उदाहरण से ये उत्तर पूछता हूं कि जब भी अपन बिस्तर पर लेटते हैं तो लेटते ही किसी को नींद आती, सौभाग्यशाली है कोई ऐसा कि इधर लेटा और इधर नींद आ गई, ऐसा तो नहीं होता है ना कभी भी, किसी के साथ नहीं होता, बराबर है। क्या होता है, विचार चलते हैं ना, अनेक प्रकार के विचार चलते हैं ना। अभी मैं आपसे पूछता हूं कि जिस समय आपको माना कि 10 नंबर की पर्याय आपकी नींद की हुई, आप बिस्तर पर लेटे, पर्याय बदली 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 बदली, माना कि 10 नंबर की पर्याय पर आपको नींद आई, मैंने 10 आपको जो नींद आई उस पर्याय को हमने एक नंबर दिया 10 नंबर, तो मेरा प्रश्न ये कि 9 नंबर की पर्याय कौन सी थी, जरा बता दो, बता दो। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि भाई साहब विचार तो चलते हैं लेकिन विचार में विचार की मुख्यता नहीं होती, नींद की खुमारी होती है। आगे बात समझ में, तो नींद की खुमारी में विचार चलने पर भी हम विचार को बता नहीं सकते। अरे आत्मा की अनुभूति क्या उस नींद से भी गई बीती है, चैतन्य की आत्मा की अनुभूति के पहले चैतन्य के विचार चलते हैं लेकिन विचार में विचार की मुख्यता नहीं होती, विचार में स्वभाव का जोर होता है और वो स्वभाव का जोर इतना प्रबल होता है, इतना प्रबल होता है कि विचार कब शिथिल पड़ते 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 सब विकल्प से निर्विकल्प अनुभूति हो गई, काम हो गया उसका, तो उसको तो पता चलता है, निर्विकल्प अनुभूति का तो पता चलता है, क्योंकि स्वभाव के लक्ष्य से, स्वभाव के जोर से, स्वभाव के बल से वो अनुभूति हुई है। लेकिन उस अनुभूति के तुरंत पहले अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय में कौन सा विचार था ये पता नहीं चलता। क्यों नहीं चलता, क्योंकि पर्याय उस विचार में विचार का जोर नहीं था, विचार के काल में जोर स्वभाव का था। तो जिसका जोर होता है उसका पता चलता है और जिसका जोर नहीं होता वो होने पर भी उसका पता नहीं चलता, नहीं बता सकते नियम। स्वभाव का कोई विचार था, स्वभाव लक्ष्य विचार था, बस इतना होता है कि कोई भी विचार हो लेकिन यह बात पक्की है कि अनुभूति के पहले अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा के ही स्वरूप का अनेक प्रकार से विचार होता है, लेकिन कौन सा विचार चल रहा था कि यह नहीं बता सकते। यह पद्धति है, यह अभ्यास की पद्धति है, उसी को पंडित टोडरमल जी ने सविकल्प से निर्विकल्प की बात कही। अब लोग कहते हैं सविकल्प से निर्विकल्प, इसका मतलब क्या है कि साहब देखो सविकल्प से निर्विकल्प होने की बात कही ना, इसका मतलब क्या है कि हमें निर्विकल्प होने के लिए विकल्प करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे। अब उसका जोर किधर गया, निर्विकल्पता पर जोर नहीं गया, निर्विकल्प होने के लिए विकल्प करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे, जोर विकल्प पे गया, कभी निर्विकल्प नहीं होगा। लिखा तो है सविकल्प से निर्विकल्प, तो भाई साहब संक्षिप्त भाषा का यही स्वरूप होता है, सविकल्प से निर्विकल्प अर्थात सविकल्प का अभाव होकर निर्विकल्प, ये उसका अर्थ है। ये अर्थ कैसे किया आपने, कि मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब ये पेन है ये कितने में आया, तो आपने कहा 500 रुपए में, बढ़िया पेन है, घड़ी वाला पेन है, कि कितने में आया कि 500 रुपए में, तो इसका मतलब क्या है, सब समझते हैं ना, ऐसा तो नहीं होता 500 रुपए में आया, मतलब 500 रुपए में उसने पेन रख करके आपको दिया कि लीजिए भाई साहब, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ कि पेन के साथ में 500 रुपए भी लपेट के दिए, ऐसा हुआ क्या, तो क्या मतलब था उसका कि 500 रुपए में आया, इसका मतलब यह हुआ कि हमारी जेब से 500 रुपए गए और तब वो पेन आया, वास्तव में रुपए जाने पर वो पेन आया और बोला जाता है 500 रुपए में आया। इसी तरह सविकल्प से निर्विकल्प ये बोलने की पद्धति है, सविकल्प का अभाव होकर के निर्विकल्प ये वास्तविक पद्धति है, और निर्विकल्प अनुभूति के पहले कौन सा विकल्प ये कोई बता नहीं सकता, लेकिन स्वभाव का जोर है ना। तो ये नक्की ये इसमें बहुत अच्छी बात कही कि बस नक्की किया हो कि शरीर जड़ है, मैं जड़ हूं, मैंने इसी तरह भेद ज्ञान मूलक जो विचार चलते हैं कि ये मैं नहीं हूं और ये मैं हूं, तो ये बाद में देखो नास्ती के विचार भी पहली स्टेज है, नास्ती के विचार भी लंबाते नहीं है, नहीं हूं ये एक बार नक्की कर लिया ना, अब बार बार ये मैं नहीं हूं, 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 इसको क्यों बार बार याद करता है, अभी क्या हूं ये नक्की करना, है ना। तो वो नास्ती एक बार कर ली, उसके बाद नास्ती के विचारों पर भी बल नहीं रहेगा, और क्या होगा, अस्थि स्वभाव का विचार आएगा। अस्थि स्वभाव के विचार में भी विचार का बल नहीं, स्वभाव का बल होगा, और स्वभाव का बल होगा तो स्वभाव प्राप्त करके ही रहेगा। एक पद्धति है इस तरह। ये भेद ज्ञान की बारे में, भेद ज्ञान मूलक विचारों के बारे में ये बहुत सारी चर्चा इसमें है, विस्तार से बहुत गजब की चर्चा है। शेष चर्चा अपन बाद में करते हैं।
ऋषभादिथि महावीर भगवान पर्यंत 24 जिनेन्द्र भगवान नो जय। सिमनंदर आदिथि अजित वीर पर्यंत 20 हनुमान जिनेन्द्र भगवान नो जय। हो अर्घ ज्ञान बरना धारक श्री बाहुबली मुनिन्द्र भगवान नो जय। समय सार प्रवचन सार आदि सर्व जिनवाणी मात नो जय। हो हालता चलता सीत सम कुंदाचार्य आदि सर्व आचार्य उपाध्याय साधु गुरु भगवंत नो जय। हो अनंत अनंत उपकारी कहान गुरु देवनो जय। हो प्रसम मूर्ति भगवती मातनो जय। आत्मसिद्धिना दाता एवा कृपाणु देवनो जय। परम पवित्र सत्य सनातन दिगंबर जैन धर्मनो जय। हे जिनवाणी भारती तो हे जपु दिन रेन, जो तेरा शरणाग्रहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमू सदा देत हूँ। बोलो जिनवाणी मातनो जय।